जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय परमंस परिवृजाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की
जय।
इस्कॉन संस्थापकाचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की
जय।
नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की
जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की
जय।
प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की
जय।
श्री राधा गिरिधारी जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा माई की ग्रंथराशुमद भागवतम की सौर्गरिष्ठ संबड़ी बोडी सौर्गरिष्ठ संबड़ी बोडी सौर्गरिष्ठ संबड़ी बोडी सौर्फ्लोरी 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 सौर्गरिष्ठ गुरु एंड गौरांग प्रभु पाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वतीव्यासं ततो दया मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद अध्याय पहला, इनका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण के अवतार, श्लोक संख्या नंबर 47। सभी लोग मेरे पीछे दोहराइएगा इन श्लोकों को। निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्य अनकढुण्डुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योधुम् इत्थं तत्र अनवप्यथ। निर्बन्ध तस्य तं ज्ञात्वा निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्य अनकढुण्डुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योधुम् इत्थं तत्राणु इत्थं तत्रान वप्यत्या
इदं तत्रान वपत्यता
इदं तत्रान वपत्यता निर्बंधं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकधुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रति व्योधुम् इत्थं तत्रानु व्यपत्यत शब्दार्थ इस प्रकार है, निर्बंधम करने के संकल्प को, तस्य उस कंस, तम उस संकल्प को, ज्ञात्वा जानकर, विचिन्त्य गहराई से सोचकर, अनकधुंधु भी वसुदेव प्राप्तम आया हुआ कालम आसानन मृत्यु संकट को प्रतिव्योधुम ऐसे कार्यों से रोकने के लिए इदं यह तत्र वह अनपत्य अन्य उपायों को सोचा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जब वसुदेव ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है, तो उसने अपने मन में गंभीरता पूर्वक सोचा। मृत्यु को आया हुआ देखकर उसने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, यद्यपि वसुदेव ने देखा कि उसकी पत्नी देवकी के मारे जाने का संकट उपस्थित है, किंतु उससे अपने कल्याण का भरोसा था, क्योंकि उसका जन्म के समय देवताओं ने धुंधुभी बजाई थी, अतः उसने देवकी को बचाने की दूसरी युक्ति सोची। होम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाखिया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ग्रामीयं तथापि स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्री उदपद कमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं सांग्रजातं सहगण रुग्नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषुवानु सुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पत्रुभिष्ट कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। तो आज के यहाँ पे प्रसंग में जहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार कंस पूरी तरह उन्होंने संकल्प ले लिया है कि बस अब देवकी को मुझे उस जीवन से उसे खत्म कर देना है। ऐसे सोचते ही जब कंस ने जब अपने हाथ में जब तलवार उठाया उसी समय वसुदेव ने अपनी बहन की रक्षा अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उन्होंने तरह तरह की योजनाओं को विचार किया। तो यहां पर वसुदेव कंस के अत्याचार के सामने वसुदेव ने भी हार नहीं माना और वसुदेव भी अपनी सारी शक्ति को लगाते हुए देवकी को मृत्यु से बचा रहे हैं। निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा जब कंस के इस दृढ़ संकल्प को ज्ञात्वा जब वसुदेव जब समझ गए विचिंत्य अनकदुभि तो यहां पर वसुदेव को कहा गया अनकदुंदुभि प्राप्तम बालम प्रति व्योढ़ुम। तो उन्होंने उनकी संकट पूर्वक समस्याओं को बचाने के लिए उन्होंने दूसरी उपाय को उन्होंने खोजा। तो यहां पर वसुदेव को अनकदुंदुभि करके इसलिए उच्चारण किया गया है कि आचार्यगण कहते हैं क्योंकि वसुदेव का जन्म हुआ शंकर जब उनका जब जन्म हुआ था तब शंख नगाड़े की ध्वनि बजी थी। जिस शंख नगाड़े की ध्वनि को सुनते ही देवताओं ने इस शंख नगाड़े के साथ साथ में उन्होंने फूल की वर्षा की और इससे वसुदेव के माता पिता को भली भांति पता लग गया कि यह पुत्र कोई साधारण नहीं है। वसुदेव को जब इस बात का ज्ञात हुआ कि मेरे माता पिता ने इस प्रकार कहा कि मेरा जन्म अनकदुंदुभि के समय हुआ है तो वाकई मेरे जीवन में कोई अमंगल या अशुभ कार्य हो ही नहीं सकता। और उन्होंने ऐसे विचार करके उन्होंने तरह तरह के मार्ग को तलाश करने के लिए प्रयास किए देवकी को अशुभ अमंगल कार्य से उबारने के लिए। तो वास्तविकता में जीवन का लक्ष्य यही है कि किस प्रकार व्यक्ति को अशुभ अवस्था से बाहर निकलना है। और सबसे बड़ा अशुभ अवस्था क्या है? मृत्यु। ये मृत्यु जो है सबसे बड़ा अशुभ अवस्था है। कब? जब उसने मृत्यु के समय पर भगवान नारायण या कृष्ण का स्मरण नहीं किया, उसके लिए सबसे बड़ा अशुभ अवस्था है। तो वैसे अशुभ अवस्था से बचने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को, एक विचारवान मुनि को या एक साधक भक्त को तरह तरह के मार्ग को खोजना चाहिए। कब तक? अंतिम समय तक। तो आचार्यगण ये बताते कि कंस जो है, यहाँ पर कंस की तुलना की गई है हमारे दूषित मन के साथ, और देवकी की तुलना की गई है भक्ति के साथ, और वसुदेव जो कि एक साधक भक्त है। तो जिस समय वसुदेव ने जब देखा कि कंस के हाथ में तलवार और देवकी की, अब वो देवकी का वध करने ही वाले हैं, उसी समय कंस के इस अत्याचार को रोकने के लिए वसुदेव ने उपाय खोजे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब एक साधक भक्त देखते हैं कि माया के द्वारा, जो दूषित मन के द्वारा, जब उसके भक्ति में जब तरह तरह के जब प्रभाव जब गिरते हैं, तब उसी समय उस साधक भक्त को उस दूषित मन को रोकने के लिए तरह तरह के उपाय खोजने चाहिए और उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए उस दूषित मन को। और तब तक उसे करना चाहिए, क्योंकि एक साधक भक्त को समझना चाहिए उसका जन्म कैसे हुआ है, अनकदुंदुभि के समय पर, है ना। हमारा भी जन्म कैसे हुआ, ऐसे ही हुआ है। तो हमारा जो आध्यात्मिक जन्म जब हुआ, जब गुरु महाराज के द्वारा जब दीक्षा मिला, तो सारे भक्त लोग अनकदुंदुभि बजाए, मृदंग करताल। जिस मृदंग करताल के द्वारा हमारा पवित्र, हमें पवित्र नाम दिया गया, पवित्र नाम जप के साथ, तो ये तरह तरह के हमारे पास उपलब्धि है। जिस वस्तु से हम इस माया रूपी दूषित मन को, इससे हम लड़ सकते हैं। तो जब एक साधक भक्त जब इस कार्य में जब परिपक्व होता है, तब वो कंस रूपी अत्याचार करने वाले असुर को नाश कर सकता है। तो यहां पर मृत्यु से बचने का उसे खोज करना चाहिए। तो मृत्यु एक ऐसी वस्तु है कि ऐसे नहीं कि भक्तों को नहीं आता है, चाहे भक्त हो या अभक्त हो, सबके सामने मृत्यु तो आती है। बस एक है, एक जो भक्त जो मृत्यु को जीत जाता है, और दूसरा जो अभक्त जो मृत्यु से हार जाता है। तो अभक्त लोग मृत्यु से हमेशा डरते हैं और भक्त लोग हमेशा मृत्यु को वेलकम करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर मृत्यु हुई तो फिर उसको भगवत धाम का दरवाजा खुला है, क्योंकि उसे पता है। तो भक्त के लिए मृत्यु जो है एक द्वार है, जिस द्वार से उसको सनातन काल का जीवन प्राप्त होता है। और इसलिए कहा गया त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, जैसे ही कोई व्यक्ति इस देह को त्यागता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसे पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि मरने के बाद उसे सनातन धाम प्राप्त होता है। तो मृत्यु से विजय प्राप्त करना ही एकमात्र बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है या कर्तव्य है। श्री प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं कि लोग कितने प्रकार से प्रयास करते हैं मरण से, मरने से कितने डरते हैं। तो बताते हैं कि एक व्यक्ति था जो बहुत रईस व्यक्ति था, बहुत अमीर था, और उन्होंने अपने नाम से बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया था, और उस हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर भी थे, और उस डॉक्टर को कहा तुम्हें किसी मरीज को चेक नहीं करना है,
केवल मुझे ही, केवल मैं आऊंगा तो ही चेक करना, बाकी समय केवल बैठे रहना, क्या करना कुछ नहीं, मैं पगार देता रहूंगा। और हुआ क्या कि एक बार उनका तबीयत जब खराब हुआ तो उसे अस्पताल लेकर गए। वो अपने अस्पताल में गया, डॉक्टरों ने चेकअप किया, डॉक्टरों ने कहा बचना मुश्किल है। तो इन्होंने कहा डॉक्टर मुझे एक साल और जीवन चाहिए, मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट बाकी रह गया है, वो कंप्लीट हो जाए, कम से कम उतना तो करने के लिए एक साल जीवन रखो। तो डॉक्टर ने कहा आई एम सॉरी, मुझे आपके लिए एक क्षण भी मैं आपको दूं तो बहुत बड़ी बात है, चाहे आप कितना भी रकम दे दो मैं आपको बचा नहीं सकता हूं। तो मृत्यु ऐसी कड़वी सच है जिसके सामने सबको झुकना पड़ता है। इसलिए तो बताया जाता है कि अलेक्जेंडर, जो कि जिन्होंने अपने समय पर पूरे विश्व को जीतते जीतते आ रहे थे, जब भारत में आए तो उनके जितने भी सेना थे वो सारे सेनाओं को मच्छरों ने काट लिया और इस कारण से उसको मलेरिया हो गया। और जब मलेरिया हो गया तो सारे जितने भी सेवक थे सब परेशान हो गए, क्योंकि मलेरिया बीमारी इतनी बुरी तरह से लग गई थी। तो अलेक्जेंडर ने कहा चलो हमें आगे बढ़ना है, युद्ध करना है, भारत को हराना है। सेनाओं ने कहा नहीं, हम भारत के मच्छरों से हार गए, अभी आगे क्या बढ़ना है। और सारे जितने भी उनके सेना थे सब हथियार वगैरह रख दिए। अलेक्जेंडर ने भी देखा ये क्या हो रहा है। तो अलेक्जेंडर को एक व्यक्ति आया, एक ब्राह्मण व्यक्ति आकर, भारत का एक ब्राह्मण व्यक्ति ने उनको शिक्षा दिया और उसको आत्मबोध हुआ, जिस आत्मबोध ने बोध से उन्होंने अपने जीवन में यह निर्णय लिया। और वो क्या कि मरने के समय पर मेरे साथ तीन कार्य करना, और वो क्या कि मेरे लाश को उठाने वाले बड़े बड़े वैद्य होने चाहिए, और मेरे लाश को जिस कब्र में रखोगे उस कब्र में दो छेद होना चाहिए, और मेरे कब्र को जब लेकर जाएंगे तो उस कब्र के रास्ते में सोने की सरबिया फेंकनी चाहिए। तो उन्होंने सेनापति को कह दिया। सेनापति ने कहा इसका तात्पर्य क्या है? तो उन्होंने कहा तात्पर्य यूं है कि मैं पूरे जगत को दर्शाना चाहता हूं ये कि मेरे कब्र को जब बड़े बड़े डॉक्टर लोग उठाएंगे तो मैं ये शिक्षा देना चाहता हूं कि देखो चाहे व्यक्ति कितना भी डिग्री प्राप्त क्यों ना कर लो, कितना भी उसके पास बड़े बड़े डॉक्टरी का डिग्री क्यों ना हो, लेकिन जब मृत्यु जब आती है तो वो ज्यादा से ज्यादा केवल कंधे देने लायक और कुछ काम का नहीं है, वो बेकार है, उसका डिग्री सब बेकार है, वो केवल कंधा दे सकता है और क्या जोर का बोल सकता है राम नाम सत्य, और कुछ नहीं कर सकता। तब उन्होंने कहा दूसरा ये कि कब्र के बाहर दो छेद रखना, वो इसलिए कि मैं लोगों को ये दर्शाना चाहता हूं कि देखो जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, तो अपने दोनों कब्र से वो दो यूं हाथ को बाहर रखकर दिखाना चाहता है पूरे जगत को। अच्छा तीसरा कि ये कि मैंने इतना मेहनत किया जीवन भर और सारे मेहनत का परिणाम क्या है, इतनी सारी संपत्ति को कमाया लेकिन रास्ते में सोने की सरपिया फेंकने के अलावा और किसी काम का नहीं। और ऐसे मृत्यु एक कड़वा सच है जिस मृत्यु से सभी लोग भयभीत होकर भागते हैं, मगर यद भी भति स्वयं भयम, जो कि यन नाम विवशो घृणन, अगर कोई भगवान के नामों को अगर जप करता है किसी भी तरह से तो स्वयं भय का जो मूर्तिमान रूपी जो मृत्यु है वो भी डर कर भाग जाता है। ये भगवान का पवित्र नाम का असर है। और ऐसा जब व्यक्ति अपने जीवन में अभ्यास करता है जिस अभ्यास से वो मृत्यु को टाल सकता है, जैसे कि पुराणों में उदाहरण आता है मार्कंडेय ऋषि का। मार्कंडेय ऋषि जो थे, जो कि एक जब उनका जब जन्म हुआ जिनके पिता का नाम था मृतुन, और ये मृतुन के पिता का नाम था भृगु मुनि। तो भृगु मुनि का पुत्र मृतुम और उनका पुत्र हुआ मार्कंड्य। तो मार्कंड्य का जब जन्म हुआ उस समय ऋषियों ने, बड़े बड़े ज्योतिषों ने कहा कि इनका आयु केवल 12 साल तक ही है और ये 12 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। तब उस समय बड़े बड़े ऋषिगण सब दंग रह गए कि इसे तो 12 साल के बाद जीगा ही नहीं आगे। उनके माता पिता हताश हो गए, बड़े दुखी हो गए, उनको गुरुकुल भेजा अभ्यास के लिए। तो गुरुकुल जब शिक्षा लेने के लिए गए तो शिक्षा लेकर जब आए तो उनके माता पिता के चेहरे में कोई प्रसन्नता नजर नहीं आ रही थी, बड़े मायूस दिख रहे थे। तो उनके माता पिता को पूछा जब मार्कंडेय ने कि आप इतने दुखी क्यों हो, किस कारण से है? तब इनके माता पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारी आयु केवल 12 साल तक है, ऐसे ज्योतिष लोगों का ये कहना है। तब मार्कंडेय ने कहा तो मैं इस मृत्यु को रोकूंगा, और मार्कंडेय ऋषि गए अपने दादा के पास, नाना। तो नाना के पास गए भृगु मुनि के पास, और भृगु मुनि को जाकर उन्होंने कहा कि मुझे आप कोई मार्ग बताओ जिस मार्ग से मैं मृत्यु से बच सकूं, क्योंकि भृगु मुनि ने देख लिया था, उनको देखते ही वो जान गए थे केवल 12 साल तक ही जिंदा रहेगा, उसे ज्यादा जिंदा ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बचने का एक ही मार्ग है, वो है भगवान नारायण की उपासना। इसी नारायण की उपासना से व्यक्ति अपने सारे मृत्यु के भय से बच सकता है। तो करना क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जप करो। और तब से मार्कंडेय ऋषि वो तपस्या में अपने आप को तलीन कर लिए और एकाग्र चित्त होकर अपने हृदय में ही भगवान का दर्शन करते हुए भगवान की स्तुति गाने लगे। और यहां पर यमदूत लोग आ गए, उनके मृत्यु का समय हो चुका था, यमदूत लोग भी आ गए उन्हें पकड़ने के लिए, और उसी समय विष्णुदूत उनकी रक्षा के लिए वहां पर उपस्थित हो गए, और विष्णुदूत ने तुरंत ही उन्हें रोक लगाया और अपना गदा को दिखा रहे थे, तो सब यमदूत लोग घबरा गए। और ऐसे विष्णुदूत ने मार्कंडेय ऋषि की रक्षा करी, और मार्कंडेय ऋषि अपने हृदय में प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान, आप सर्वेश्वर हो, समस्त कारणों के कारण हो, और मृत्यु नामक भय भी आपसे डर कर भागता है अगर कोई आपके शरण को ग्रहण किया। और इस प्रकार उनकी स्तुति गाने लगे, और वही स्तुति बन गया मृत्युंजय मंत्र। तो मृत्युंजय मंत्र क्या है, वो कुछ और नहीं, मार्कंडेय ऋषि ने जो नारायण की स्तुति गाई वही है। और लोग इसलिए मरने के डर से उन लोग मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो मृत्युंजय मंत्र जो है, वो जो नारायण वो सबके स्वामी है, उसी का अगर केवल नाम मंत्र करेंगे तो ये सारा मृत्यु से व्यक्ति बच सकता है, और वो भूल कर वो केवल उसी में अटका है। तो वैसे मार्कंडेय ऋषि ने उस मंत्र को जप किए, और जिसके आधार पर विष्णुदूत असमर्थ हो गए, परेशान होकर चले गए, लौट गए वापस यमराज के पास, और यमराज को जाकर खबर दिया कि एक व्यक्ति को हम पकड़ने गए लेकिन वो तपस्या में तलीन था, उसकी तो मृत्यु की आयु हो चुकी है, और हम बराबर एड्रेस में गए, कोई हमारा रॉन्ग नंबर नहीं लगा है, फिर भी वो लोग मुझे, कोई तो व्यक्ति आया और रोक टोक लगाया, और कुछ हाथ में शंख गदा चक्र लेकर बैठ खड़ा था, ये लोग कौन है, क्या आपसे भी बढ़कर कोई मालिक है क्या, पहले ये मुझे बताओ। तो यमराज समझ गए कि हाँ ये कौन था, कोई और नहीं, सब विष्णु दूत है। तो यमराज ने कहा कि उस व्यक्ति के पास दोबारा कभी मत जाना जो व्यक्ति भगवान का नाम जब एक बार भी किया है। तो कोई अगर एक बार भी अगर भगवान का नाम स्मरण किया है या एक बार भी भगवान को अगर प्रणाम किया है, उसके सामने यमदूत कभी जीवन में नहीं आएंगे। स्वप्ने अपि न पश्यति, स्वप्न में भी वो यमदूत को कभी दर्शन नहीं कर पाएगा। अगर जिस व्यक्ति ने भगवान के नामों को जप किया है, इसलिए कहा गया है कि भगवान का एक नाम और एक तराजू में रख दिया जाए और दूसरे तराजू में जीवन भर के जन्म जन्मांतर के कोटि कोटि जन्म के पाप को दूसरे तराजू में रख दो, तत्पर भी जिस तराजू में राम का नाम पड़ा है वही तराजू जो है उसका जो पल्ला है भारी रहेगा। क्यों? क्योंकि वही एक नाम है जिस आधार पर व्यक्ति कोटि कोटि पाप को क्षय कर सकते और मृत्यु रूपी भय भी उससे भाग जाता। तो जब यमराज ने जब उनको ये शिक्षा दिए यमदूतों को, और शिक्षा देने के बाद यमराज फिर गए नरक की ओर, उनका जो डिपार्टमेंट था उस डिपार्टमेंट में चक्कर लगाने गए, तो बड़े करुणावश होकर उन्होंने सारे बदजीवों के ऊपर अपनी दृष्टि करते हुए वो कहने लगे, अरे मूर्खो, तुमको पता है यहां पर तुम इतने नरक में क्यों सड़ रहे हो? क्योंकि तुम लोगों ने भगवान हरि का नाम जप नहीं किया। अगर तुम लोग अगर भगवान हरि का नाम जप करोगे तो समस्त प्रकार के पापों से क्षय हो जाएगा और तुरंत ही तुम्हें इस नरक की वेदना से तुम्हें छुटकारा प्राप्त होगा। केवल उनके चरणों पर अपने चित्त को एकाग्र करते हुए भक्ति पूर्वक नामों का जप करो। जब इस प्रकार कहा तो जितने भी नरकवासी थे, जो जो लोग यमराज की बात को सुनकर भगवान का नाम जप करना शुरू किए, वहीं पर ही विष्णुदूत उपस्थित हो गए उसी स्थान पर, और उनको उसी क्षण नरक की वेदना से उनको छुटकारा दिया। और तब यमराज यमदूतों को ये साक्षी के रूप में दिखा रहे, देखो देखो इन लोगों ने भगवान का नाम जप किया, इन लोग तर गए। अब यमदूत लोग थियोरिकली सुना था, प्रैक्टिकली देखा नहीं, अब देख भी लिए, अब कंफर्म हो गया कि हाँ ऐसा होता है। तब यमदूतों को यमराज कहने लगे, जो भगवान का भक्त है उस भक्त के लिए मेरे पास उसका कोई अकाउंट बुक्स नहीं है। वो सारे जितने भी जो भक्त हैं वो सारे भक्तों का जो लेन देन या हिसाब किताब मैं नहीं रखता हूँ, विष्णु स्वयं रखते हैं। और ऐसे भगवान के नामों को जप कर कर मार्कंडेय ऋषि ने वो मृत्यु रूपी भय को भी भगा दिया, और जब वो तपस्या से जब तलीन होकर जब सफल हो गए, फिर वो अपनी तपस्या से बाहर निकले, तब वो उन्हें पता लग गया कि अब मृत्यु मुझसे भाग गई। फिर मार्कंडेय ऋषि वापस गए अपने घर पर और उनका विवाह हुआ, और विवाह होने के पश्चात उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम पड़ा वेद ऋषि, वेद सीरा। और फिर वापस मार्कंडेय ऋषि वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करते हुए निकल पड़े। अब प्रयाग में गए भगवान का ध्यान, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के प्रति सब कुछ समर्पण करते हुए उस स्थान पर बैठकर उन्होंने पुनः वहां पर तपस्या शुरू कर दिया। और किस लिए? केवल भगवान का दर्शन करने के लिए। तो कई वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, और अचानक आकाशवाणी हुई, जिस आकाशवाणी में ये कहा, हे मार्कंड, तुम्हें अगर भगवान का अगर दर्शन करना है तो ऐसी तपस्या से नहीं होगा, तुम्हें सारे तीर्थ स्थानों में स्नान करना होगा, और जब स्नान के पश्चात भगवान को दर्शन करने की लालसा प्रकट करेंगे तब भगवान का दर्शन होगा। तो इन्होंने क्या किया, पूरे तीर्थ स्थानों का उन्होंने अपना आचमन इत्यादि करने के पश्चात वहां पर स्नान करने के बाद भी उन्होंने देखा दर्शन नहीं हो रहा है, तब उन्होंने उसी आकाशवाणी के उसके साथ उन्होंने ये कहा कि आकाश में देखकर कि हे देवताओं, मैंने तो अपना जो आपने कहा वैसे किया, लेकिन मुझे तो ये संभव नहीं लगता, कोई और मार्ग है तो बताइए। तब वापस आकाशवाणी हुआ, जिस आकाशवाणी में ये कहा कि हे मार्कंडेय ऋषि, अगर तुम भगवान का नाम जप करोगे और उस नाम जप में कुछ एक मंत्र बताया, जो बड़ा लंबा चौड़ा मंत्र है, जिस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है कि हे भगवान, आप सर्वेश्वर हो, आपने ही प्रह्लाद की रक्षा के लिए प्रकट हुए, हे भगवान आप ही वामन देव के रूप में प्रकट होके बलि महाराज से 3 लोक को जीत कर राजा इंद्र को प्रदान किया उनका स्वर्ग, हे भगवान आप इतने महान हो कि आप ही स्वयं पूरे संसार में जब भी कुछ दुष्ट लोग जब जन्म लेते तो उनको विनाश करने के लिए प्रकट होते हो, और कृपा करके मेरे सामने भी आप प्रकट हो जाइए, मैं भी आपका दर्शन करना चाहता हूं। और ऐसे याचना से अगर आप प्रार्थना करोगे तो भगवान का दर्शन हो गया। तो मार्कंडेय ऋषि ने इसी प्रकार उन्होंने प्रार्थना किया, जिस प्रार्थना से भगवान स्वयं प्रकट हो गए। अब जब भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि हे मार्कंडेय, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हे भगवान, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे आप दीर्घ काल का जीवन दो, ताकि मैं आपका दीर्घ काल तक आपकी भक्ति करते रहूं। भगवान ने कहा हे मार्कंडेय ऋषि, तुमने तो मृत्यु को जीत ही लिया है, अब क्या बचा है। कैसे? केवल मेरी भक्ति के बल से। तो मार्कंडेय ऋषि ने अपने जीवन में मृत्यु को जीत लिया केवल भगवान की भक्ति के आधार पर, और यही एक आधार है जिस आधार से व्यक्ति अपने आप को मृत्यु से बचा सकता है। बाकी अन्य जो भी मार्ग है उस मार्ग में केवल कष्ट ही है और उसमें पूरी सफलता नहीं है। जैसे कि हम देखते धृतराष्ट्र की स्थिति, धृतराष्ट्र जो थे इन्होंने पूरा जीवन विषय भोग में लगा दिया था। जब अंतिम समय पर जब विदुर के द्वारा जब उनको प्रचार किया गया तो विदुर से जब उन्होंने सुना कि जीवन नश्वर है और मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, और ऐसे उनके अंदर इतनी ग्लानि हुई, जिस ग्लानि से धृतराष्ट्र ने अपने घर बार सब छोड़कर अपनी पत्नी गांधारी के साथ निकल पड़े। तो एकाएक जब दूसरे दिन जब पंच पांडव जब उठे तो उनको पता लगा कि हमारे पिता समान धृतराष्ट्र अब नहीं रहे, कहाँ चले गए बिना कुछ बताए, तो बड़े दुखी हुए। जिस दुखी की अवस्था को देखकर वहां पर नारद मुनि का आगमन होता है, और उसी स्थान पर नारद मुनि आकर युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम चिंता मत करो, आज से 7 दिन बाद धृतराष्ट्र अब वो अपने जीवन में सफल हो जाएगा और अष्टांग योग विधि के द्वारा वो सभी तरह से मृत्यु को जीत लेगा। और इस प्रकार जब कहा और वाकई 7 दिन बाद हुआ क्या, उन्होंने अष्टांग योग के विधि के द्वारा अपने ही शरीर से वो अग्नि को प्रकट किए, और जिस अग्नि से उन्होंने अपने शरीर को जलाया और जलाने के साथ झोपड़ी को भी जला दिए, और जिस झोपड़ी में गांधारी ने सती के रूप में छलांग लगा दी। और विदुर जी को ये जब खबर मिला कि धृतराष्ट्र अब मृत्यु को प्राप्त मृत्यु को जीत लिए, जीवन को सफल कर दिया, मगर विदुर जी के अंदर प्रसन्नता भी हुई और दुखीपन भी हुए। विदुर जी प्रसन्न इसलिए हुए क्योंकि धृतराष्ट्र ने मृत्यु को जीत लिया, अब दुखी इसलिए हुए क्योंकि विदुर जी सोचने लगे भले ही उन्होंने मृत्यु को तो जीता, मोक्ष को तो प्राप्त किया, लेकिन परिपक्व नहीं हुए या पूर्ण रूप से उन्हें सफलता नहीं मिला और वो क्या उन्हें भक्ति प्राप्त नहीं हुई। और इस बात से विदुर जी दुखी थे। तो जीवन का, जीव का वास्तविक पूर्ण रूप से सफलता वही है, वह है भगवान के चरण कमल के प्रति भक्ति। और जिस भक्ति के आधार पर ही व्यक्ति मृत्यु को जीत सकता है वास्तविक, बाकी जो भी मार्ग है वो केवल क्षणिक है और उसमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं है। और ऐसे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जीव को तरह तरह के मार्ग को खोजने चाहिए। जैसे यहाँ पर वसुदेव खोज रहे देवकी की रक्षा के लिए, तो ऐसे इस मार्ग के द्वारा वो देख रहे थे कि कंस जो कि इतना बड़ा अत्याचारी, उस कंस को मुझे समझाने के लिए कुछ करना होगा। पहले तो कंस की खूब स्तुति गाए। अब ये कंस कौन थे? ये कंस जो था, इसके विषय में पुराणों में वर्णन आता है कि इनका जन्म इस प्रकार हुआ कि राजा उग्रसेन जो थे उनकी पत्नी का नाम पड़ा, उनकी पत्नी का पत्नी थी पद्मावती, और ये पद्मावती जो थी सतकेतु के पुत्री थी, और ये सतकेतु जो थे वैधर्य राज्य के राजा थे। और उस राज्य में उनका जो पुत्री पद्मावती, उस पद्मावती को उन्होंने विवाह किया उग्रसेन से। लेकिन सतकेतु जो थे अपने पुत्री के प्रति उनका बड़ा स्नेह था, तो वो हमेशा चाहते थे कि मेरी पुत्री मेरे आंखों के सामने रहे, और उनका जो लगाव जो था पत्नी से ज्यादा अधिक अपनी पुत्री के प्रति हुआ था। और इसीलिए उन्होंने अपने जो दामाद जो थे उग्रसेन को कहा कि कृपा करके आप अपनी पत्नी यानी कि मेरी जो लड़की है उनको कुछ दिन के लिए वापस भेजो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने भेज दिया। जब पद्मावती जब आई तो पद्मावती के साथ ही उनका भोजन इत्यादि, उनसे खूब चर्चा होते थे, और पद्मावती की कई सहेलियाँ भी थे, तो उन लोग अपने सहेलियों के साथ खेलने के लिए चले गए। और जब सहेलियों के साथ जब खेलने के लिए गए, तब उसी समय कुबेर का सेवक था, वो बड़ा असुर था, तो उनकी दृष्टि पड़ी पद्मावती पर, तो उन्होंने उनसे विवाह के लिए याचना की। और उन्होंने जब खोजा कि इसका हिस्ट्री क्या है, तो पता लगा ये उग्रसेन की पत्नी है, तो वो विचार करने लगे, ओह ये उग्रसेन कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, इतनी सुंदर सुशील पत्नी को छोड़ दिया, कोई बात नहीं मैं जाता हूँ उनके पास, लेकिन मैं जाऊँगा तो मेरे प्रस्ताव को स्वीकारेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने योग विद्या से अपने रूप को उग्रसेन में बदल दिया। और जहाँ पर ये जो खेल रहे थे पद्मावती इत्यादि उनके सहेली, उसके निकट के एक वृक्ष के नीचे खड़े रह कर ये सुंदर ध्वनि के रूप में गाने लगे। और जब वो गाना जब सुनाई पड़ा इन पद्मावती को, तो उनको पता लग गया कि मेरे पतिदेव का ही आवाज है। और ये जो असुर जो था, इनका नाम ग्लोबिश करके था, ग्लोबिश, तो ये जो असुर, इन्होंने ऐसे एक्टिंग किया जैसे कि हूबहू उनका ही पति है, थोड़ा भी डिफरेंट नहीं लगता था। और तब उस समय यहाँ पर जब पद्मावती आकर देखी ये मेरे पति देव यहाँ कैसे आ गए, तो उन्हें संशय हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पति देव यहाँ कैसे आ सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने उग्रसेन ने उनको पास बुलाया, मैं तुमसे मिलने के लिए कितना बेकरार हूँ, मेरे पास आओ। जब वो उनके पास जब गई पद्मावती, तब उस समय उन्होंने अपना ऊर्जा पद्मावती के गर्भ में स्थानांतरित किया, और तब पद्मावती को पता लगा कि ये कोई और व्यक्ति है, तो बड़े क्रोधित हुई, और जिस क्रोध में उन्होंने कहा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, तो इन्होंने कहा मैं तो असुर, मेरा काम ही है। और तब उस समय पद्मावती बड़ी क्रोधित हुई, क्रोधित होकर जब वो अपने पिता को, फिर उनके उग्रसेन को ये खबर प्राप्त हुआ तो बड़े क्रोधित हुए, और तब उसी पद्मावती के गर्भ से जो संतान हुआ और वो था कंस। तो ये कंस जो इन्होंने जन्म होने के पहले ही वो असुर ने कह दिया कि ये ऐसा बालक होगा जो त्रिभुवन को हिलाएगा, इतना बलशाली रहेगा, और सब इनसे डरेंगे, देवतागण भी डरेंगे। तो पद्मावती पहले से सोच रही थी कि मैं इसे मार दूंगी, लेकिन तत्पर भी वो मार नहीं पा रही थी, क्योंकि वो तो आज के तारीख में सब शुरू हो गया अबॉर्शन वगैरह, लेकिन पहले ये सब नहीं था। वैसे देखा जाए तो कंस भी जो था वो आजकल के असुरों से तो ज़्यादा बेहतर था। कंस कम से कम बालकों को जन्म तो होने दिया, लेकिन आज के तारीख में लोग इतने कंस से गए गुजरे हैं कि गर्भ में ही उसकी हत्या कर देते हैं, लेकिन पद्मावती ने ऐसे नहीं होने दिया। और तब उनका जब जन्म हुआ, तब उस समय पद्मावती उसे मारने के लिए जब योजना की, तब यही कंस कहने लगा कि जिसने जिस दिन जन्म लिया उसी दिन उसका मरण भी निश्चित है। कौन कह रहा है? यही कंस कह रहा है, बाल अवस्था में ही। अब देखिए वही कंस की दृश्य यहां पर दिखाई पड़ रही है। अब वो पूरी तरह उबावले क्रोधित होकर उबल गए और सीधे बस अपनी बहन को मारने तैयार हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं मरूं, मैं वही हूं कालनेमी जो कि पिछले जन्म में मैं विष्णु के द्वारा मारा गया था, अब भी मेरे अंदर वही वैरी है, और विष्णु को या तो मैं मारूंगा या तो उनके हाथ से मरूंगा। तो देवकी तो पद्मावती समझ गई कि ये तो अच्छी बात है कि विष्णु के हाथ से मारे मर जाए, और ऐसे सोचकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। और इस तरह यहाँ पर कंस का जो अंतिम जो गति है और जो लक्ष्य है वह है भगवान कृष्ण, उन्हीं के हाथ में उसकी मृत्यु होगी, और इसको हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की।